दर्शन के बाद में उसका पिता आया तो उसने पूछा, पूछा कि बेटा तू कहाँ जाता है, तुम्हें भागवत कथा सुनने के लिए, और इसीलिए तो तुम्हारी गड़बड़ी होगा। मैंने बात मना किया था ना, तुम अभी का क्या है, मैंने 80 बरस तक भागवत की कथा सुनी, किंतु मैं जब सभा गृह में से चलता हूँ तो वहीं पर भागवत छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर आकर के वो सब भागवत तागवत मैं नहीं जानता, और तुम कच्चे आदमी वहां से भागवत को लेते हैं अपने मन में, यहाँ इसलिए तो गड़बड़ी हो गई। पहले पक्का हमारे कहता बनो, सुनो किस वहीं पर छोड़ दो, पालन मत करो, तब तक ये भागवत सुनना, और नहीं तो तुम्हें बिगड़ जाएगा, और बिगड़ करके तुम भी भक्त हो करके और तुम भट छोड़ करके वृंदावन में भागेगा और हर संसार नष्ट हो जाएगा। तो वैसे आप लोग मत करेंगे, जो कुछ सुन रहे हैं यहाँ पर सुनेंगे, अपने हृदय में रख लेंगे, नहीं तो सभा घर में छोड़ देंगे तो भागवत सुनना नहीं होगा। तो उसने बताया, देखो जो चला गया उसको तो तुमने देखा नहीं, आप तो नहीं तो क्यों रोका है, ऐसे तो लोग लाखों लोग मरते हैं। देखो एक दिन की बात, एक कबूतर और कबूतरी उसके कुछ बच्चे थे, उनको छोड़कर के जंगल में दाना चरने के लिए गए, चरते 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 उन्होंने देखा कि जंगल की खासों में जब गंगा के किनारे नदी के किनारे सुंदर सुंदर हरी हरी घासें हैं और उस पर मोती जैसे कण बिखरे हुए हैं चावल के, उन्हें कहा कि यत्न चलिए हम लोग बच्चों के लिए और अपने लिए दाना चुने। कबूतर ने कहा कि मैं नहीं चलता, अरे बनिए का घर थोड़े है या कृषक का घर है जो यहाँ पर चावल का दाना होगा, ये जरूर बहेली है, यहाँ पर दाना लगाया है तुमको पकड़ने के लिए और हमको पकड़ने के लिए। वो मानी नहीं, फूल रूढ़ी और जाकर के खाने लगी, कबूतर कभी बुलाने लगे इशारे से वो नहीं गया, और इतने में बहेलिया ने देखा कि ये कबूतरी तो खूब दाना चुन रही है, बस चावल खा लिया उछल लगी, अब तो रोने लगी। उसने देखा ये तो जाल में पड़ गई है तो मरी, वो भी वहां आकर के वो भी विलाप करने लगा। जब विलाप करते करते तन्मय हो गया तो बहेलिया ने अपनी धनुष बाण उठाया और उसके कलेजे में ऐसा बाण मारा कि इस पार से उस पार हो गया, वो भी गिर पड़ी, और ताली बजाता हुआ हंसता हुआ आया। जाल में पड़ी हुई कबूतरी को और बाहर में मरे हुए कबूतर दोनों को बांध करके पीठ पर ला चला गया और उसको रसोई बना करके खा गया। ऐसे देखो संसार में कोई नहीं है जो बचा है, जो जन्म लिया है मरेगा, आप लोगों ने जन्म लिया है मरना, जिनका जन्म निश्चित जातक ही दूर, जिनका मृत्यु निश्चित है उनका जन्म भी निश्चित है, और जिनका जन्म है उनका मृत्यु है, ऐसा कोई है हाथ उठाओ तो जो मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगी, दो वर्ष की बच्ची भी हमारे बाप दादे सब मर गए, हमको भी मरना है आज कल परसों में, इसलिए भाई भगवान का नाम करो, यही रक्षा करो। हमें से कोई मर गया शोक में ऐसे व्याकुल हो गए जब मृत्यु आकर तो उसको भी पकड़ दिया, अपना कर्तव्य नहीं किया, उनको कुछ ज्ञान हुआ तो कि आप हमारा उद्धार कीजिए, मैंने भगवान का मंत्र लो, भगवान का मंत्र दिया जब करके उनका उद्धार हो गया। थोड़ी देर बाद में उनकी स्त्रियां जिन्होंने बीज किया तो वो भी नारद जी के पास में, हमने अत्याचार किया, हमने बीज दिया, हमारा कल्याण कैसे, उन्होंने कहा तुम भी भगवान का नाम करो, वो भी भगवान का नाम करके इसके बाद उद्धार। थोड़ी देर के बाद में ये चित्रकेतु महाराज जी कहीं जगत में घूम रहे थे हिमालय पर, शंकर जी पार्वती जी को अपनी गोदी में लेकर और हरि कथा कर रहे थे ब्रह्मर्षियों की सभा में, लाखों ब्रह्मर्षि। उस समय में शंकर जी नंगे थे, सांपों का अलंकार पहन करके और सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं, नारद जी को और सब ऋषि महर्षियों को देखता हूँ। चित्रकेतु महाराज जी आए वहां हंसते हुए बोले के मित्र, उनके मित्र के गुरु भाई ने बलराम जी के ये दोनों शिष्य हैं शंकर जी और ये चित्रकेतु महाराज, उन्होंने कहा तुम नंगे होकर के पार्वती जी की गोदी में लेकर के इस सभा में तत्व का उपदेश कर रहे हो, ये तो किसी से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्र को मित्र हसी दिल भी कर सकता है, पर पार्थिव जी को रोष हुआ, उन्होंने कहा कि तू शंकर का तू गुरु है, इनको शिक्षा देने के लिए आया है, ब्रह्मा इनको उपदेश नहीं देते, नारद जी जैसे लोग बैठे हैं, अब तू आकर के इनको उपदेश दे, जाओ असुर हो जाओ। तो वह हंसने लगे, एवं तू ऐसा ही हो, जिनको भक्ति होती है भगवान में वो कैसी भी स्थिति में घबराता नहीं है, भक्ति किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होती। शंकर जी कुछ रोक से बोले, आज मैंने देखा पार्वती जी ने इनको अभी संपा दिया कि ये जैसे कैसे थे रहे, और कहा चित्रकेतु महाराज जी तो वैसे कैसे थे, तुम अपने रूप के अभिमान में इनको ऐसा अभी संपा दिया, ये चाहते तो तुम्हारे अभी संपात को दूर कर देते थे, नहीं हम नहीं छोड़ते, तुम कोई अभिशाप दे दे, इंद्रियों ने नहीं दिया, इनकी महिमा बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने तो ले लिया। और ये कौन
वसुर
हुए, वह युद्ध करें इंद्र से, इंद्र को करें हमें तू मार जल्दी से, इस आसुर देव के शरीर का दूसरे भगवान का वजन नहीं होता, किंतु वज लेकर के भी नहीं मार पा रहे हैं, और समय के भगवान की स्तुति करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं, यह प्रभो हमारा तन मन वचन आप में लगे, मैं अपना सब समय नाम ग्रहण करू, अजात पक्षा नियमातम खड़ा, जैसे चिड़िया को दो बच्चे हैं, उनके पंख नहीं आए हैं, आंखें नहीं दी आई हैं, अपनी मैया के लिए चिल्ला रहे चिंता करते हैं, वैसे भगवान के लिए चिंता, जिस प्रकार से बछड़े अपनी मैया को दूध पीने के लिए जगाते हैं, उसी प्रकार से मैं उत्सव स्तर से भगवान का नाम कीर्तन करूं, और जिस प्रकार से स्त्रियां अपने प्रियतम को सब समय सेवा करने के लिए कल्पित रहती हैं, वैसे ही मेरा मन आपके चरण में रहता है। तीन प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन, उन्हीं का नाम चिंतन करना और उन्हीं का नाम स्मरण करना, विशेष करके गोपियों का जैसा भाव है, ऐसे कृष्ण को प्रियतम मान करके हमारा मन आपके चरण में। इंद्र देव का स्तर कहते हैं कि और तू कहा इस स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहा है, तो उसकी गति क्या हुई, उनका शरीर दूर हो गया और फिर चित्रकेतु महाराज के रूप में भगवान का भजन कर, इसलिए जब भक्ति का प्रारंभ कर दिया, नाम श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन कोई भी कुछ भी किया, और यदि भगवान के प्रति थोड़ी सी भी ममता और आसक्ति हो गई और उनका भजन कर दिया, उसका विनाश कर दिया, मैं आपकी कर्मनाश तो सबके कभी भी इसमें पक्षपात नहीं होता है, बस बच्चों के प्रति साधुओं के प्रति गुरु के प्रति अपराध न हो, अन्यथा कोई पाप ही हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ी देर के बाद में फिर वो पुनः वैसे होकर के भगवान का प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में भी ऐसा ही दिखलाया। प्रकार से प्रहलाद महाराज जी का भी ऐसा ही, प्रहलाद महाराज जी के संबंध में उन्होंने बतलाया, जब उपदेश बाकी रह गया थोड़ा सा, उन्होंने असुर बालकों को क्या उपदेश दिया, देखो कुमार आचरित बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना कठिन नहीं है। असुर बालकों ने कहा जब से क्या जरूरत है, जहां बड़ा हो जाएंगे तो बड़ा होने के पहले यदि मर गया तो भजन करेगा, तो अभी हम खेलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे विवाह करेंगे बच्चे होंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तब बूढ़ा होने से पहले या तो मर गया, आपको मर भी तो सीधी नहीं होगी, बूढ़े होने पर दम खुलेगा, उस समय तू भगवान का भजन कैसे करेगा, इसे बचपन से न तक प्रयास होकर तब जाता आयु बड़ा, न तथा जिसको संसार में सुख होना नहीं चाहता, किंतु दुख अपने आप आ जाता है। कोई दुख संसार में नहीं चाहता, अपने आप दुख आ जाता, सुख भी अपने आप आ जाता। इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप जरूर आएगा। बहुत से लोग हैं कुछ सांप तो कोई काम नहीं करते, हम लोग भी अपने खाने के लिए भोजन के लिए क्या करते हैं, इसलिए सुख होगा तो अपने आप आएगा। इसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करो। देखो एक वर्ष की आयु में 20-25 वर्ष पढ़ने लिखने और किसी एक विषय में एक्सपर्ट होने में लग जाते हैं, और उधर का 20 वर्ष 80 से 100 वर्ष में एकदम जड़ हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ करने से 40 वर्ष को ऐसे गया। और अब यहाँ 10 वर्ष, इस 10 वर्ष में विवाह करना, बच्चों का परवरिश करना, कितने तरह के आपत्ति विपत्तियां होती, इसी में चला जाता है। भगवान का भजन आदमी कब करेगा? अपने छोटे छोटे सुख लाकर भी बच्चों को, अपनी प्यारी स्त्री को चैतन्य महाप्रभु की भांति कौन छोड़ करके जाएगा? अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके कौन जाएगा? भगवान का भजन करना बड़ा कठिन है, इसलिए बच्चों से भगवान का भजन। ये 10 वर्ष तो हस्तक्षेप से भी चले जाएंगे, इसलिए मृत्यु और संभावी असर। इसलिए सदगुरु प्राप्त करो, उसकी सेवा करो और भगवान का नाम करो, उनकी कथाओं को स्मरण करो, यही जगत में साथ। इसके प्रहलाद महाराज जी को बच्चों में कैसे ज्ञान हो गया? ब्राह्मण के बेटे थे, पूर्व जन्म बड़े अच्छे लड़के थे, अच्छे घर में खानदान में शादी हुई। कुछ दिनों के बाद में एक बेटिया को उन्होंने देखा, उसकी फेर में पड़ गए, अपना सारा अर्थ उसको दे दिया। जब सब ले लिया तो इनको वहां से भगा दिया, बहुत अपमान किया, अपना प्राण छोड़ने जा रहे थे कि अब हम कहां जाए, इसने हमारा इतना अपमान किया, हमारा सर्वस्व ले लिया। जंगल में गए, वर्षा होने लगी, फेरिए बाघ भालू गर्जन करने लगे, रात ठंडी रात कपाती हुई थी, एक मंदिर में ठहर गए। प्राण का तो मोह होता ही है, और वो लड़की भी बेचारी रात में इनको खुशी 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 वहीं पर आई, वो भी एक कोने में डूब गई। जब सवेरा हुआ तो देखा, अरे रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, देखा यह नृसिंह जी का मंदिर है, नृसिंह मंदिर में, और उसी दिन नृसिंह का चतुर्दशी का व्रत था, किंतु ये लोग जानते नहीं, अपने आप झगड़ने से उपवास हो गया, रात भर सोए नहीं दुख से। इसका यह फल था कि महाराज ये प्रकाश हुए, माता के गर्भ में नारद जी मिले, इनको उपदेश दिया, इसलिए बच्चों से। इसलिए एकादशी का उपवास, रामनवमी का जन्माष्टमी का उपवास नहीं जानते तभी कुछ फल होगा, किसी से ऐसी सुकृति होगी जो भगवान के चरण की आएंगे, और इससे कोई प्रति नहीं। इसलिए सहज रूप में इन सबका करते हुए भगवान का भजन करते हुए घर का काम करते, इसी में हमारा कल्याण, भागवत का उपदेश है। अब अगले कल इसे
जय राधा रमन हरी।